मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज 28 दिसंबर 2015 है और आज के इस afeis.com के ऑडियो फॉर एक्सीलेंस, मित्रों इसका नाम रखा गया ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में, मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दो सोमवार से हम लोगों ने इस डेली ऑडियो गाइडेंस के पैटर्न को बदल दिया है और उस बदले हुए पैटर्न का यह तीसरा ऑडियो गाइडेंस है। और अब आप लोगों से मैंने जो नाम मांगे थे, आप लोगों ने बहुत से नाम भेजे हैं कि इस प्रोग्राम का क्या नाम रखा जाना चाहिए, तो दोस्तों उन सब पर बहुत विचार करने के बाद अब इसका नाम फाइनल कर लिया गया है और इसका नाम रखा गया है ऑडियो फॉर एक्सीलेंस। इसके पीछे एक बहुत सोचा समझा मकसद है और मकसद यह है मित्रों कि इसमें हम जिन सब्जेक्ट्स को लेकर चलेंगे वो डेफिनेटली एक्सीलेंस से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स होंगे। एक्सीलेंस चाहे वह जीवन से संबंधित हो, सिविल सर्विस परीक्षा से संबंधित हो, हमारे संबंधों के बारे में हो, हमारे सुख और दुख के बारे में हो, हमारे डिसीजन मेकिंग्स के बारे में हो, या जीवन के जो अलग अलग डाइमेंशंस होते हैं उनमें से किसी के बारे में हो, हां उन सारे विषयों का झुकाव इस तरीके से होगा कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को ज्यादा से ज्यादा एक्सीलेंट बना सकें और अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा एक्सीलेंस हासिल कर सकें। तो मित्रों, इसीलिए अब इसका नाम फाइनल कर लिया गया है ऑडियो फॉर एक्सीलेंस। मुझे लगता है कि यह नाम शायद आप लोगों को बेहतर लगेगा और इस ऑडियो को आप लोगों का भरपूर प्यार भी मिलेगा। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले दो ऑडियो से कुछ अलग अलग टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं, हालांकि वो दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यहां हम सही मायने में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल हमें अपने कैरियर के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, हम जो कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उसके बारे में कैसे फैसला करना चाहिए। आप इससे पहले के दोनों ऑडियो में सुन चुके हैं कि खासकर इन फैसलों के बारे में जिस तरह के मिथक फैले हुए हैं, और सच पूछिए तो बहुत से यंग स्टूडेंट्स, यंग लड़के लड़कियां इन मिथकों के शिकार होकर के कहीं ना कहीं भटक भी जाते हैं, उसी को मैं थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। मित्रों, मैं उन्हें बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं सच पूछे तो उसमें किसी तरह के विचारों के मिलावट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो बातें कही जाती हैं सच पूछे तो वो गलत नहीं कही जाती। मैं केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो जो बातें कही जाती हैं मूलतः उसके अर्थ क्या होते हैं। सामान्यतया जब हम किसी भी बात के शब्दों को पकड़ लेते हैं और शब्दों को ही जब हम अर्थ मानने लगते हैं तो सार छूट जाता है, और जब सार छूट जाता है तो सब कुछ छूट जाता है। और आप जानते हैं कि जैसे ही कोई चीज आपके हाथ से छूटती है वो टूट जाती है और बिखर भी जाती है। कुछ ऐसा ही हम सबके साथ होता है। इसलिए दोस्तों, मैं उन शब्दों के पीछे जो अर्थ छिपे हुए हैं, जो भाव छिपे हुए हैं, जो सार छिपे हुए हैं, खासकर उसी के समझाने की शुरुआत से मैं इस ऑडियो में ऐसे विषयों को मैंने उठाया है, और अभी शायद हम एक दो ऑडियो तक इसी इशू पर बात करते जाएंगे। आप लोगों के इस बारे में जो भी प्रश्न हो उनका स्वागत है। जब आप प्रश्न पूछेंगे तो डेफिनेटली अलग से तो उसका उत्तर शायद मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप लोगों के प्रश्न इस ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में जरूर शामिल करके उनके उत्तर देने की कोशिश होगी। फ्रेंड्स, यहां मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर आप लोगों से विचार विमर्श करने जा रहा हूं, और वह प्रश्न है खासकर हमारी एबिलिटी की, हमारी कैपेसिटी की, हमारी क्षमताओं की। नो डाउट कि जब हमारे ऋषि मुनियों ने उद्घोष किया कि अहम ब्रह्मास्मि, तो उन्होंने हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश की थी कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम क्रिएटर हैं, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और जब हम की बात होती है उसमें मैं को थोड़ा सा समझना होगा, जो मैं अपने पिछले ऑडियो में आपको बता चुका हूं कि थोड़ा सा इस अर्थ के भाव को पकड़ना होगा, और वो ये कि मनुष्य जाति, सारे मनुष्य मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, या उसमें से एक भी मनुष्य कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर मनुष्य हर कुछ कर सकता हो। और मुझे लगता है कि यह बात आप लोगों की बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ भी गई होगी। मित्रों, अब मैं इसके अगले स्टेज पर आता हूं, और वो ये है कि हमारी जो कैपेबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है, जो हमारी क्षमताएं हैं, वो किस किस तरीके की होती हैं, हमें वो कहां से मिलती हैं, क्या ये बिल्कुल निर्धारित ही होती हैं, या इनमें परिवर्तन भी होता है, होता है तो कैसे होता है। इन सारे इश्यूज पर हम लोग थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, और डिटेल में बात इसलिए करेंगे दोस्तों क्योंकि यही तो हमारे लाइफ का फाउंडेशन है, लाइफ हमारे जीवन की जो नींव है, लाइफ की जो फाउंडेशन है वो यही है। इसीलिए हम बहुत गंभीरता के साथ, बहुत स्पष्टता के साथ, विस्तार के साथ इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। मित्रों, यहां मैं शुरुआत इस बात से करूंगा कि हमारी जितनी भी कैपेबिलिटी होती है, जो हमारी क्षमताएं हैं, हम क्षमता शब्द का प्रयोग करते हैं, हमारी जितनी भी क्षमताएं होती हैं वो हमें तीन तरीके से मिलती हैं। हमें इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए, और समझने के बाद फिर इनमें एक सुंदर सामंजस्य बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। यह सामंजस्य जितना बेहतर होगा, संतुलन जितना अच्छा होगा, मान करके चलिए कि हमारी सफलताएं भी उतनी ही अच्छी होंगी। एक जो पहली हमारी जो कैपेसिटी है, उसको देने वाली जो शक्ति है, जो स्रोत है मित्रों, वह है प्रकृति, नेचर। प्रकृति से हमें बहुत सी क्षमताएं मिलती हैं, जिसे यदि आप चाहें तो आप कह सकते हैं कि वो जन्म लेते ही हमें प्राप्त हो जाती हैं। यानी कि उसके बारे में हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते, कुछ विशेष नहीं करते की बात नहीं है, हम कुछ भी नहीं करते। और ये जो हमें प्रकृति द्वारा क्षमताएं मिली हैं, ये भी दो तरह की होती हैं। इन्हें हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि पिछले ऑडियो में मैंने चर्चा की थी कि कुछ हमारे इंटरनल वर्चूज की जरूरत होती है और कुछ हमें एक्सटर्नल मींस की जरूरत होती है, मतलब कुछ हमें आंतरिक गुण चाहिए और कुछ हमें बाह्य साधन चाहिए। तो ये आंतरिक गुण क्या है और बाह्य साधन क्या है, यह बात इससे स्पष्ट हो जाएगी। मित्रों, मैं कहीं पैदा हुआ, हम सब कहीं ना कहीं जन्म लेते हैं, और जन्म लेते ही हमारी कुछ क्षमताएं निश्चित हो जाती हैं, वो प्रकृति से हमें मिलती हैं। मैं जन्म की जगह यहां थोड़ी प्रकृति की बात कह रहा हूं, प्रकृति शब्द का जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं, और इसी का जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें मैं जन्म का इस्तेमाल करूंगा, या मैं थोड़ा सा डिफर कर रहा हूं, मैं इसके विज्ञान पर नहीं जाऊंगा, मैं इसके व्यावहारिक पक्ष पर आप लोगों से बातें करूंगा। जैसे स्वास्थ्य, हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कैसा है वो आपके डीएनए में लिखा जा चुका है, और कैसा रहेगा ये भी लिखा जा चुका है। आप देखते हैं कि डीएनए की हम कितनी बात करते हैं, अगर आप चाहें तो आप डीएनए को एक तरीके से जन्म कुंडली मान सकते हैं, उसी सेंस में नहीं जैसे कि हम जन्म कुंडली का प्रयोग करते हैं, लेकिन डीएनए एक तरह की हमारी जन्म कुंडली ही है, जिसमें हमारी बहुत सी चीजों के बारे में लिख दिया गया है, और उसमें सबसे बड़ी बात जो लिखी गई है वो हमारे स्वास्थ्य की बात है। आप देखते हैं कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर, अगर मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, तो डॉक्टर पूछता है कि आपकी फैमिली में तो किसी को नहीं है, जब शुगर की बीमारी की बात होती है तो आपकी फैमिली में तो किसी को नहीं है, यहां तक कि हार्ट अटैक के बारे में जब बात होती है तो ये फिर पूछा जाता है कि आपकी फैमिली में तो किसी को नहीं है, अस्थमा की बात होती है तब भी यही बात होती है। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, ये प्रकृति से हमें मिला है, जिसे आप चाहें तो कह सकते हैं कि जन्म से भी मिला है। मित्रों, काफी कुछ सीमा तक बुद्धि, मेमोरी, यहां बुद्धि को आप चाहे तो मेमोरी का भी नाम दे सकते हैं। यहां मेरा जो मकसद है वो मेमोरी से ही है। इसे मेडिकल साइंस भी मानता है कि जो भी हमारे दिमाग में जो भी चीजें मेमोरी से रिलेटेड जो बननी होती हैं वो जन्म से बन जाती हैं, और सच ये है कि जब हम गर्भ में होते हैं तभी से वो बननी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए भारतीय परंपरा में अक्सर ये कहा जाता है कि जैसे ही मां गर्भवती होती है उनको अपने विचार बहुत अच्छे रखने चाहिए, वो तनाव से मुक्त रहने चाहिए, उनका डाइट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, उनकी जीवनचर्या बहुत अच्छी होनी चाहिए, उन्हें बहुत स्वस्थ और खुले वातावरण में रहना चाहिए। उसके पीछे मकसद यही है कि मां जो कुछ भी अभी जितना भी ये सब करेगी बच्चे का विकास गर्भ में उतना ही बेहतर होगा। और नो डाउट कि उसमें जो न्यूरॉन्स दिमाग में जो बनते हैं, जो मेमोरी के लिए सबसे बड़े खजाने का काम करते हैं, वो क्रिएट होते हैं। अब जो बन गए हैं वो बन गए हैं, वो हमें जन्म से मिलते हैं। आपने देखा होगा, अक्सर महसूस किया होगा, और मेरे इस ऑडियो को बहुत से पेरेंट्स भी सुनते हैं, उन पेरेंट्स का ये अनुभव भी रहा होगा कि मान लीजिए कि किसी पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, आप देखेंगे कि दोनों बच्चों का आप बचपन याद करने की कोशिश कीजिए तो उनमें बहुत वेरिएशंस मिल जाएंगे। एक बच्चा है जो बचपन से ही बहुत एक्टिव है, बहुत बदमाश है, बदमाश मतलब शैतान है, बदमाश नहीं कहना चाहिए, मैं गलत शब्द में इस्तेमाल कर लिया, मैं माफी चाहूंगा, बहुत ही शैतान है, यानी बहुत ही एक्टिव है, कह लीजिए शैतान भी क्यों कहें, बहुत ही वो एक्टिव है, चाहे वो तोड़ फोड़ के मामले में एक्टिव हो, क्वेश्चन पूछते पूछते नाक में दम कर देता है, चुप ही नहीं रहता, बहुत बोलता है, ये एक बच्चा है। दूसरा बच्चा या बच्ची ऐसी है जो बहुत शांत है, बहुत अनुशासित है, ज्यादा प्रश्न नहीं करता, जो भी आप कह लीजिए उसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि पहले वाला है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, सारी चीजों को रिजेक्ट करता रहता है। अब आप देखिए कि ये दोनों बच्चे आपके ही हैं, दोनों के माता पिता एक ही हैं, लेकिन दोनों की क्षमताएं अलग अलग हैं। मित्रों, ये जो मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, जैसे एक बच्चा प्रश्न करता है, ये जो प्रश्न करने वाला जो बच्चा है और जब आप उसके जवाब देते हैं तो उस जवाब से भी फिर वो प्रश्न निकालकर प्रश्न करता है, और सही मायने में अगर आप उसका चेहरा देखें तो शायद जो हम उत्तर दे रहे हैं उससे भी वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन चूंकि उस नया सवाल उसके दिमाग में खड़ा नहीं हो रहा है इसीलिए वो उसे सुनकर चुप हो जाता है। हो सकता है कि कुछ समय के बाद, एक दो दिन, पांच दिन के बाद या एक दो साल के बाद फिर से उसके दिमाग में उसी से संबंधित कोई प्रश्न खड़ा हो और वो फिर से आपसे पूछने लगे, हम नहीं जानते। ये संतुष्ट होने वाला बच्चा नहीं है। तो ये जो इसकी आदत है, इस बच्चे की आदत है, देखिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप क्षमताओं को डिफाइन कैसे करेंगे, क्योंकि क्षमताएं अपने को किसी न किसी माध्यम से रिफ्लेक्ट करेंगी, प्रतिबिंबित करेंगी। वो कैसे बताएंगी क्षमताएं, कोई अलग से कागज पर लिख करके नहीं आ जाएंगी, वो उनके व्यवहार में, बोलचाल में, एक्टिविटीज में, चेष्टाओं में, हाव भाव में, उनकी रुचियों में, इन सभी में ही रिफ्लेक्ट होगी। वहीं से हमें उन क्षमताओं को पकड़ना होगा, दूसरा हमारे पास कोई साधन है ही नहीं। तो ये जो बच्चा, जो लगातार क्वेश्चन करने वाला बच्चा है, ये किस क्षमता को रिफ्लेक्ट कर रहा है? सच पूछिए तो ये उसकी मानसिक क्षमता को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये बता रहा है कि इस लड़के की जो बुद्धि है वो बहुत तेज है, और इसकी जो प्रवृत्ति है, जो नेचर है, वो बहुत ही जिज्ञासु किस्म का है, आराम से संतुष्ट होने वाला नहीं है, उत्तरों से भी ये प्रश्न निकालता है और फिर उससे प्रश्न निकालता है, एक्टिव है। अगर वो बहुत एक्टिव है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, बात नहीं मान रहा, इस तोड़फोड़ कर रहा है, इसका मतलब है हम व्यावहारिक रूप में चाहे उसे जो भी नाम दें कि बहुत शैतान है, बहुत बदमाश है, किसी की सुनता नहीं है, अक्सर हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं व्यावहारिक जीवन में, लेकिन क्षमता के रूप में अगर आप देखेंगे तो फिर से एक क्षमता रिफ्लेक्ट होती है कि वो बहुत एनर्जेटिक है, ये बहुत ऊर्जावान है, डल नहीं है, मतलब फुल ऑफ एनर्जी, वो भरा हुआ है ऊर्जा से, ज्ञान की इतनी जिज्ञासा उसके अंदर है कि वो संतुष्ट होने का नाम ही नहीं लेती। मित्रों, आपने पहले फर्स्ट ऑडियो में अगर मेरा संबोधन सुना हो तो मैंने उस संबोधन में कहा था कि मैं स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं, अपने सभी बच्चों का स्वागत करता हूं, उन बड़ों का भी स्वागत करता हूं जो इसे सुनना चाह रहे हैं। मैं उन्हें इस मायने में बच्चा ही मानता हूं कि उनमें कम से कम सुनने की जिज्ञासा है, और जिसके अंदर जब तक जिज्ञासा बनी रहती है वो बच्चा ही रहता है। ये डेफिनेशन मैंने शुरू में दी थी अगर आपको याद हो तो। तो ये जो जिज्ञासा है इस बच्चे के अंदर, अगर हमने किसी तरीके से इसे बचाकर हम रख सके तो ये ज्ञान के क्षेत्र में ये पता नहीं क्या से क्या कर सकता है। ये कभी संतुष्ट होगा ही नहीं, कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लेगा संतुष्ट नहीं होगा, कितनी किताबें पढ़ लेगा तो संतुष्ट नहीं होगा, कितनी किताबें लिख लेगा तो संतुष्ट नहीं होगा। ज्ञान के क्षेत्र में असंतुष्ट रहना इसके डीएनए में लिखा जा चुका है। अब बट नेचुरल है कि अगर आप इसकी इस क्षमता को पकड़कर समझकर इसका पालन पोषण करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये लाइन उसको कहीं भी पहुंचा सकती है। मतलब ये एक एकेडमिक किस्म का इस लड़का है। अब इस एकेडमिक किस्म को आप किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि डॉक्टर बन जाना एकेडमिक पर्सुएशन है, इंजीनियर बन जाना एकेडमिक पर्सुएशन है, साइंटिस्ट बन जाना, प्रोफेसर बन जाना, अब आप इस राइटर बन जाना, किसी भी रूप में आप डिफाइन कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, उस बच्चे के ऊपर है कि आगे वो क्या सोचता है, या आप यूं कह ले कि समाज के ऊपर है, क्योंकि समाज भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है कि वो जो कुछ भी करने जा रहा है उसकी समाज में कितनी जरूरत है, इस आधार पर भी निर्णय लिए जाते हैं। मित्रों, एक बात मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा कि मैं ये पेरेंट्स, अभी जो मैंने बात कही ये पेरेंट्स को संबोधित है, बीच में मैंने पेरेंट्स का नाम लिया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वक्त गुजर चुका है। मेरी इन बातों को जब आप ध्यान से सुनेंगे तो अभी आप अपने उम्र के किसी भी दौर में क्यों ना हो, आप बड़े आराम से इन सूत्रों का इस्तेमाल करके, अगर मैं सूत्र भी ना कहूं तो इन समझदारी का इस्तेमाल करके आप अपने लिए बहुत अच्छा रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। जैसे अभी मैंने जिस जिज्ञासा की बात की, जिस ज्ञान के परसुएशन की बात की, असंतुष्ट रहने की बात की, अब मान लीजिए कि आप सिविल सर्विस के लिए तैयारी करने जा रहे हैं, आपको लगता है कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है, कोई बात नहीं, लेकिन सिविल सर्वेंट बनने की जो शुरुआत होगी और शुरुआत से अंत जो होगी, बनने तक की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होगी, वो प्रक्रिया ज्ञान पर आधारित प्रक्रिया है। आपकी रुचि पढ़ने में होनी ही चाहिए, और नो डाउट कि मेमोरी भी थोड़ी बहुत तो ठीक होनी ही चाहिए, एनालिसिस पावर चाहिए, इन सब चीज बातों के बारे में आप जानते हैं। तो अगर हम इस तैयारी वाले पीरियड को डिफाइन करना चाहें कि इसमें किस एबिलिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो आप कह सकते हैं कि ज्ञान अर्जित करने की एबिलिटी, जिज्ञासा होनी चाहिए, पढ़ने में रुचि होनी चाहिए ताकि आप अपने इस इच्छा को पूरा कर सके। तो ये इसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट हुई, ये बनने तक की बात है, बनने के बाद की बात नहीं है, वो उसकी चर्चा हम हो सकता है कि बाद में करें। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी प्रकृति प्रदत्त हमारी क्षमताएं होती हैं जो बीज के रूप में हमारे अंदर मौजूद होती हैं, जिन्हें बचपन में बहुत आराम से पकड़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, और इसके बाद फिर ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कितना पाल पोस सकते हैं, या हमारे पेरेंट्स इसमें कितनी मदद करते हैं, समझ करके हमें कैसे आगे बढ़ाते हैं, या फिर ये समाज के ऊपर होता है कि समाज उसे कैसे आगे बढ़ाता है। मित्रों, मैं डार्विन की लाइव पढ़ रहा था, डार्विन को आप जानते हैं, जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया है और पूरी दुनिया में एक हलचल मचा दी थी उनकी थ्योरी ने सन 1850-60 के आसपास। उनके बारे में कहा जाता है, जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि वो घर से अपने स्कूल के लिए निकलते थे, लेकिन वो स्कूल ना पहुंच करके और वो पास में जो जंगल टाइप की जो जगह होती थी छोटे मोटे, वहां निकल जाया करते थे और वहां वो फालतू की चीजें इकट्ठे किया करते थे, कीड़े मकोड़े इकट्ठे करेंगे, हड्डियां इकट्ठे करेंगे, पत्तियां इकट्ठी करेंगे, और लोग समझ नहीं पाते थे कि ये लड़का क्या करता है, ये क्या कर रहा है फालतू की, फिर उनको इकट्ठा करना, ये करना, उन्हीं सब में उलझे रहते थे और शिकायत उनके घर पर पहुंच जाती थी कि ये तो स्कूल ही नहीं आता है। अब आप देखेंगे कि जो उन्होंने पूरी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया है, उन्होंने किया क्या है, उन्होंने 5 साल तक वो पानी के जहाज में बैठ करके और अलग अलग द्वीपों के चक्कर लगाते रहे और यही सब इकट्ठे करते रहे, कहीं से पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं, कहीं से फॉसिल्स इकट्ठे कर रहे हैं, कहीं से फौना इकट्ठे कर रहे हैं, इन सब का एक ढेर लेकर के अपने घर में ले आए और इसके बाद उसकी स्टडी कर रहे हैं, उनमें एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं और उसके आधार पर उन्होंने एक थ्योरी डेवलप कर ली कि इस धरती पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आप उसका जो बीज है वो वहां उस बचपन के उन आदत में पकड़ सकते हैं, उस आदत में पकड़ सकते हैं जब वो स्कूल छोड़ करके जंगलों में चले जाया करते थे। उनके लिए वो जंगल ही स्कूल था, जो पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े हड्डियां पत्थर जो पड़े हुए हैं वही उनके लिए लिखे हुए अक्षर थे, वो उनको पढ़ा करते थे। तो ये बात जो मैं आपको ये जो थ्योरी बता रहा हूं मित्रों, आप बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं ये कोई अपनी मनगढ़ंत थ्योरी बता रहा हूं। काफी स्टडी के बाद जो मुझे महसूस हुआ है और मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं पहली बार ये कोई कोशिश हो रही है, लोगों ने अपने अपने तरीके से इन्हीं बातों को बताया भी है। हां, चूंकि अब मैं उनकी बातों से कन्विंस हो गया हूं इसीलिए इन बातों को आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जिनको आप प्रकृति प्रदत्त क्षमताएं कह सकती हैं। यहां मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा और वो ये कि जो कला का क्षेत्र होता है, उस कला के क्षेत्र में खासकर ये गिफ्ट ऑफ नेचर, इसको अगर आप कहेंगे प्रकृति के द्वारा दिया गया उपहार है, ये बहुत काम करता है। जैसे कोई कवि बन रहा है, या कोई पेंटर बन रहा है, या कोई म्यूजिशियन बन रहा है, कोई एक्टर एक्ट्रेसेस बन रहे हैं, ये कला का क्षेत्र है, ये रचनात्मकता का क्षेत्र है। वैसे तो रचनात्मकता की जरूरत सभी जगह होती है, लेकिन कला की रचनात्मकता इस मायने में थोड़ी सी बिल्कुल डिफरेंट होती है दोस्तों, कि यहां कल्पना का बहुत जबरदस्त स्थान होता है। जैसे लेखन दो तरह का, एक कवि है जो कविता लिखता है और दूसरा एक लेखक है जो प्रोज लिखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों में कौन महत्वपूर्ण है, लेकिन जो कविता का जो लेखन है वो बहुत अधिक कल्पना की मांग करता है। आप जबरदस्ती बैठ करके कविता नहीं लिख सकते। हो सकता है कि आप एक दिन में 10 कविताएं लिख जाएं, और हो सकता है कि आप 10 महीने में एक भी कविता न लिख पाए। और अगर आप जबरदस्ती बैठ करके लिखने की कोशिश करेंगे तो लिख तो लेंगे लेकिन वो कविता नहीं होगी, या फालतू की कविता होगी। जबकि प्रोज अगर आप लिखने बैठते हैं तो जबरदस्ती भी आप लिख सकते हैं कि नहीं, मुझे आज तो ये लिखना ही लिखना है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी में थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि पढ़ने वाले को पता ही ना लगे कि क्वालिटी में कोई फर्क है। आप महसूस कर सकते हैं क्योंकि आप अपनी क्वालिटी के बारे में जानते हैं, लेकिन शायद पाठक महसूस ना कर सके। लेकिन पोएट्री के बारे में पाठक भी महसूस कर लेगा, वो रिजेक्ट कर देगा कि ये क्या पोएट्री है। तो ये जो कल्पनात्मक क्षमता है, ये डेफिनेटली मैं समझता हूं कि ये गिफ्ट ऑफ नेचर है, प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अद्भुत उपहार है। तो अगर वो चीज आपके अंदर है, महसूस हो रही है, तब वो आपका वो भाग है, आप उसके हिस्से हैं। और अगर वो महसूस नहीं हो रही है तो फिर इसको ला पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बात अलग है कि उसके लिए स्कूल खुले। जैसे मान लीजिए कि एक्टिंग एक नेचुरल गिफ्ट होता है, और अगर नेचुरल गिफ्ट नहीं है तो आप अब इसके लिए स्कूल खुले हुए हैं, ड्रामा के सेंटर्स खुले हुए हैं, आप वहां जाकर के सीख भी सकते हैं, लेकिन वो बात बनेगी नहीं। देखिए, जो इस तरह का जो प्रशिक्षण होता है, जो ट्रेनिंग होती है, इसे आप कह सकते हैं कि मांझने का काम हो रहा है। वो जो नदी बह रही थी ऑटोमेटिक तरीके से, जो नदी बह रही थी उस नदी को ही सजाने संवारने का काम हो रहा है। नदियों के किनारे ही घाट बनाए जा रहे हैं, नदी नहीं बनाई जा रही। और दोस्तों, जब नदी बनाने की कोशिश होती है तो वो नहर बनती है, उसको हम नदी नहीं कहते। ऐसा नहीं है, नदी नहर भी नदी की तरह ही काम करती है, बल्कि आप कह सकते हैं कि कभी कभी वो नदी से भी ज्यादा उपयोगी हो सकती है। बात मैं उसकी नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो नदी की जो क्षमता है, जो सार्वभौमिकता है, जो नेचुरलिटी है, वो नहर की तो नहीं हो सकती। तो हम कृत्रिम क्षमताएं भी पैदा करते हैं, लेकिन उससे वो बात बनती नहीं है जो नेचुरल चीजों में होती है, जो प्रकृति की बराबरी तो की ही नहीं जा सकती। तो कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां फिर हम प्रकृति की क्षमताओं को ही श्रेष्ठ क्षमताएं मानते हैं, क्योंकि अगर वो है तभी हम उस शाखा के सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे, सर्वोच्चता तक पहुंच सकेंगे। अदरवाइज ठीक है, हम दूसरों से बेहतर हो सकते हैं, एक मीडियोकर से बेहतर हो सकते हैं, और प्रसिद्धि भी मिल सकती है, सफलताएं भी मिल सकती हैं, लेकिन शायद उस सफलता से हम वंचित रह जाएं जहां दूसरे लोगों ने सफलताएं जिस लेवल की हासिल की हैं। तो मित्रों, ये प्रकृति के द्वारा दी गई क्षमताएं हैं। मैं बाद में आप लोगों को एक छोटे से स्टोरी के जरिए इन सबको और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप थोड़ा सा ध्यान धैर्य के साथ इन थोड़े से सैद्धांतिक चीजों पर विचार करने की कोशिश करें। जो दूसरी होती है, जो दोस्तों इसी का ही हिस्सा है, जो मैंने कहा कि जन्मगत, ये जो मैंने प्रकृति प्रदत्त कही है, इसे आप इंटरनल वर्च्यू कह सकते हैं, क्योंकि हमें संस्कार के रूप में भी डीएनए के माध्यम से, परिवार के माध्यम से काफी चीजें मिलती हैं। तो इसे आप इंटरनल वर्च्यू कह सकते हैं, आंतरिक गुण कह सकते हैं। अब मैं मींस पर बात आ रहा हूं कि एक्सटर्नल मींस, बाह्य साधन, ये भी हमें काफी कुछ जन्मगत ही मिलते हैं, लेकिन वो बाह्य रूप में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा कहां पैदा होगा, ये उस बच्चे के हाथ में नहीं है कि मैं यहां पैदा होना चाहूंगा, किसी के हाथ में भी नहीं है। लेकिन हम सब कहीं ना कहीं जन्म लेते हैं, हमारे माता पिता होते हैं जिसे हम अपना परिवार कहते हैं। हमारे माता पिता, हमारा जो परिवार है, उसकी अपनी एक आर्थिक स्थिति होती है, एक सामाजिक स्थिति होती है, एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, ये उनका परिवेश होता है, इसे हम परिवेश का नाम देंगे। और तीसरा, उनका अपना एक स्थान होता है कि वो कहां रह रहे हैं, कुछ कुछ पहाड़ में रह रहे हैं, रेगिस्तान में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, कस्बे में रह रहे हैं, नगर में रह रहे हैं, महानगर में रह रहे हैं, ये सब स्थान हुए। तो दोस्तों, ये जो हमें चीज मिली किस रूप में, मान लीजिए कि आप एक बहुत धनी परिवार में पैदा होते हैं, तो जो आर्थिक शक्ति आपकी है, जो धन है, वो आपका एक्सटर्नल मींस है। मतलब अब आप इतने साधन संपन्न हैं जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया है, आपने तो कुछ भी नहीं किया, केवल उस परिवार में जन्म होने के कारण ही धन रूपी एक ऐसा बड़ा साधन आपको मिल चुका है कि जिसको माध्यम बना करके आप अपनी क्षमताओं को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, कुछ क्षमताओं को। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप अच्छे से अच्छे देश के अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ सकते हैं, आप विदेश में जाकर के पढ़ाई हासिल कर सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। जैसे मैं बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनमें बहुत अधिक पैसों की जरूरत होती है, सारे स्पोर्ट्स में नहीं, लेकिन कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं अगर जिसमें आप परसू करना चाहते हैं अपने कैरियर को, तो उसके लिए पैसा चाहिए। जैसे शूटिंग को ले लीजिए, वो एक खर्चीला स्पोर्ट्स है। तो अगर मान लीजिए कि आपका शूटिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन आपके पास साधन नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर फिर आपको वहां अपनी इच्छा दबानी होगी। आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप बहुत बड़ा रिसर्च करना चाहते हैं, तो रिसर्च, अब कम से कम हम थॉमस अल्वा एडिसन के जमाने में नहीं रह रहे हैं कि जब कहीं भी रिसर्च की जा सकती है, एक गैरेज में रिसर्च की जा सकती है। अब रिसर्च करने के लिए आपको बहुत से इक्विपमेंट चाहिए, बहुत से साधन चाहिए। अब ये साधन कहां से आएंगे? बहुत इच्छा होने के बावजूद मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, यह बात अलग है कि उसका एक दूसरा एंगल है, मैं आगे चलकर के चर्चा करूंगा। क्योंकि ऐसा भी नहीं है मित्रों कि हम सब साधनों के इतने ज्यादा गुलाम होते हैं कि उन्हें तोड़कर हम बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा नहीं है, ऐसा भी है। लेकिन वो कैसे है, कैसे होता है, उसके लिए क्या चाहिए, क्या रियलिस्टिक अप्रोच हो, इसकी मैं बात करूंगा। और यही शायद आप सब, हम सब के लिए सबसे ज्यादा जानना जरूरी भी है, क्योंकि हम फंसते इसी तरीके से हैं। अब स्थान, डेफिनेटली जो किसी न किसी एक ऐसी जगह पर हैं जो अपने आप में बहुत समृद्ध जगह है, आर्थिक, जहां साधन बहुत जल्दी उपलब्ध हो सकते हैं, वहां का वातावरण बहुत ही जीवंत है, पढ़ाई के बहुत अच्छे साधन हैं, दूसरे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, तो डेफिनेटली वहां का जो बच्चा होगा उसको उस स्थान का लाभ मिलेगा। मान लीजिए कि कोई दूर दराज के गांव में पैदा हो गया है, तो स्वाभाविक तौर पर उसकी मानसिक संरचना भी उसी तरीके से बनेगी, उसके ज्ञान का क्षेत्र भी काफी कुछ उसी तरीके का होगा। चलिए आजकल तो इंटरनेट और टीवी और दूसरे माध्यमों से ज्ञान के क्षेत्र को आप एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन और दूसरी बहुत सी चीजें होंगी जो वहां उपलब्ध नहीं होंगी। जैसे मान लीजिए लोगों का समूह, अगर कोई अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो वहाँ जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ उसका इंट्रैक्शन हो रहा है, ऐसी स्थिति में उसका ग्रुप भी आगे चल करके जब वो अपने दोस्तों के बारे में बात करेगा तो अच्छे स्कूल में पढ़े हुए जो स्टूडेंट हैं डेफिनेटली दूसरों की तुलना में थोड़े से ज़्यादा फायदे में होंगे। आप इसको इस तरीके से कर लीजिए कि एक सामान्य स्थिति का बच्चा वो है एक ऐसी चिड़िया की तरह है जो अपनी उड़ान की शुरुआत जमीन से कर रहा है। उसकी क्षमता आप कह लीजिए कि 500 मीटर तक ऊपर उड़ने की है, लेकिन वो कोशिश करके वो अपने उस क्षमता को 1000 मीटर ऊपर तक ले जाता है। वो 1000 मीटर तक उड़ रहा है और ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन एक ऐसा भी लड़का है या एक ऐसी भी चिड़िया है जो पहले से ही 500 मीटर ऊपर बैठी हुई है, छत पर बैठी हुई है। अब उसको वहां से उड़ान भरनी है, उसकी क्षमता भी 500 मीटर ही है, ज्यादा क्षमता नहीं है। अब वो अगर 500 मीटर वाली अपनी क्षमता का उपयोग करेगा तो हाइट उसकी कितनी होगी, वो भी 1000 पहुंच गया, जबकि पहले वाली चिड़िया को उस 1000 तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो ये जो स्थान है मित्रों, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक और पारिवारिक परिवेश तो बहुत मायने रखता ही है, उसके बारे में आप जानते ही हैं। अगर बहुत आप पढ़े लिखे परिवार में हैं तो मानसिक संरचना अलग होगी, सामान्य परिवार में है मानसिक संरचना अलग होगी। वर्ग का भी यही होता है, अगर आप उच्च वर्ग के में पैदा हुए हैं तो मानसिक संरचना अलग होगी, मध्यम वर्ग में है तो अलग होगी, निम्न वर्ग में है तो अलग होगी। मित्रों ये जो मैं वर्ग की बात कर रहा हूं, स्थान की बात कर रहा हूं, धन की बात कर रहा हूं, आप इसको इस रूप में बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि मैं इनका महिमा मंडन कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं है। या मैं जो नीचे के तबके की बात कर रहा हूं उनको कहीं डिस्करेज कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। सच पूछे तो मैं इन्हीं के लिए ये मेरी कोशिश है कि कैसे ये अपनी स्थिति को सोचकर इसे तोड़कर भेदकर और सही मायने में अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कर सके, भटके नहीं। तो आप मेरी इन बातों को बिल्कुल भी इस रूप में न लीजिएगा कि मैं कहीं भी रत्ती भर भी डिस्करेज करने की कोशिश कर रहा हूं, नॉट एट ऑल। मैं आप सबके अंदर एक बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही वैज्ञानिक सोच और दृष्टि पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं, और यदि यह थोड़ी सी भी हो गई तो आप देखेंगे कि आप ही रास्ता निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि रास्ते नहीं है, मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूं कि हमारा जो जीवन है वो किसी लोहे की दीवारों से घिरे हुए किले में कैद है, नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अहम ब्रह्मास्मि है मैं उसको आपको बताऊंगा कि कहने का क्या मतलब। उन लोगों ने कहा है तो कोई झूठ मूठ नहीं कहा है, मैं केवल उसकी सच्चाई को अलग तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा हूं। और मित्रों जो तीसरा जो क्षमता का जो स्रोत होता है, या दूसरा ही कह लीजिए अगर हम इस जन्मगत वाले को प्रकृति वाले में मान लेते हैं, क्योंकि कहां पैदा होंगे ये भी हमारे हाथ में नहीं होता, तो चाहे तो आप उसे प्रकृति का हिस्सा मान सकते हैं या जन्म का हिस्सा मान सकते हैं। जो अंतिम स्रोत होता है वो होता है अर्जित क्षमताएं, यानी कि बहुत सी क्षमताएं ऐसी होती हैं जो हम अर्जित करते हैं, हमारे अंदर नहीं है, प्रकृति ने भी हमें नहीं दी है, जन्म भी हमारे ऐसे परिवेश ऐसे परिवार में नहीं हुआ है जहां कि हम कुछ इन सब इतने बड़े बड़े काम कर सके। बड़े ना भी कहें तो हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सके, चलिए बड़े और छोटे का निर्धारण तो समाज करता है, हमारी चेतना करती है। तो क्या हम वास्तव में अब कुछ भी नहीं कर सकते, हम मजबूर हो गए हैं और हमने जिस तरह से जन्म लिया है केवल उसी तरह से अब हमारा अंत होगा, या हमारा जन्म ही हमारा अंत बनेगा? क्या हम सच में इतने ज्यादा असहाय हैं प्रकृति के सामने, अपने परिवार के सामने, समाज के सामने, अपने जन्म से? क्या सच में हम असहाय हैं? क्या दूसरी चीजें भी हमारी क्या उपलब्धियां होंगी, क्या यह भी हमारे डीएनए में लिखा गया है? बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है दोस्तों। क्षमताओं का जो सबसे बड़ा जो स्रोत होता है वो होता है अर्जित क्षमताएं। आप अर्जन करते हैं, उन्हें हासिल करते हैं, उन्हें एक्वायर करते हैं। हालांकि ऐसी कोई संभावना आपको दिखाई नहीं देती कि ऐसा कुछ किया जा सकता है, लेकिन आप उन्हें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप ब्रह्म हैं, त्वम ब्रह्मास्मि, आप ब्रह्म हैं, आप अर्जित करते हैं। लेकिन अर्जित करेंगे किसको, अर्जित करेंगे कैसे? क्या जो कुछ भी सोचा जाएगा वो अर्जित हो जाएगा? अब अगर जो सोचा जाएगा उसे अर्जित भी करना है तो उसे कैसे अर्जित किया जा सकता है? दोस्तों यही सबसे बड़ी चुनौती है, और सच पूछिए तो इसी को स्पष्ट करना मेरा उद्देश्य भी है, और उसी को स्पष्ट करने के लिए ये मैंने सारी अपनी पिछली पृष्ठभूमि तैयार की है, इतनी सारी बातें आपसे की हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं थोड़ा कैनवास पर ज्यादा विश्वास करता हूं, और मुझे लगता है कि यदि मैं ये पूरी पृष्ठभूमि आपको नहीं बताता और सीधे अपनी इस बात पर आ जाता तो शायद आप मेरी बात को उस तरीके से नहीं समझ पाते। और क्योंकि मेरी बात केवल समझने की बात नहीं है बल्कि इसको उपयोग में लाने की बात है, इस पर आपको काम करना होगा, काम करना ही चाहिए आपको, चाहे आप अपने लिए करें, चाहे आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए करें, या पेरेंट्स के लिए मेरा अर्ज है कि वो खुद अभी वर्तमान में जो पीढ़ी जो डेवलप हो रही है उनके सामने उनके लिए करें। तो मित्रों आज के इस ऑडियो फॉर एक्सीलेंस को अब मैं यहीं विराम देता हूं, और नेक्स्ट में हम जो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है कि ये जो अर्जित क्षमता है, इस अर्जित क्षमता को हम कैसे हासिल करें कहना चाहिए, इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। डेफिनेटली ये आपको कैसा लग रहा है, आप लगातार मुझे अपने फीडबैक प्रोवाइड करते रहिए, निश्चित रूप से इससे मुझे दिशा भी मिलेगी, और आप लोग जानना क्या चाहते हैं ये भी मुझे बताते रहें। आप जो भी जानना चाहते हैं अगर वही मैं बता सकूंगा तो वही चीजें काम की भी होंगी, अदरवाइज पता लगा कि मैं अपनी अपने ढंग से ही अपनी अपनी बातें करता जा रहा हूं, उस पर मेरा विश्वास भी नहीं है। आप लोग जो भी आप लोगों के फीडबैक आएंगे वो मेरे लिए मेरे इस ऑडियो फॉर एक्सीलेंस को तैयार करने के लिए कंटेंट का काम करेंगे। तो मित्रों इसी के साथ ही अब मैं इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।